ओम शांति। बाप दादा ने हमें एक बहुत अच्छा स्वमान दिया है, बच्चे आप इस बेहद ड्रामा में हीरो पाठधारी हो। लेकिन हीरो के लक्षण जीवन में लाने के लिए पहले जीरो बनना पड़ेगा। किस विधि से हम जीरो बने और अपने पाठ को हीरो पाठ बनाए, आइए इस विषय पर हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के उर्मिला बहन जी, हम सभी आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आपने 1981 में ज्ञान प्राप्त किया तथा 1985 में अपने आप को यज्ञ सेवा में समर्पित कर दिया। अनेकानेक अभियानों के द्वारा आपने भारत भर में अपनी सेवाएं दी है। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत शिविर लगाने के आपके पास बहुत अच्छे अनुभव है। कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपने संबोधन दिया है तथा अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी आपने वक्तव्य दिया हुआ है। आप एक बहुत ही अच्छी लेखिका तथा वक्ता भी है। वर्तमान समय मासिक ज्ञानामृत पत्रिका तथा त्रैमासिक हरियाली पत्रिका की आप सह संपादिका है। तो आइए हम क्लास सुनेंगे उर्मिला बहन जी के द्वारा, किस तरह हम अपने आप को जीरो बनाकर अपने पाठ को हीरो पाठ बनाए। आदरणीय उर्मिला बहन जी।
ओम शांति। हमारे भारत देश के एक प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। आप सभी ने नाम सुना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही नम्रचित, सादे, सच्चे और निरहंकारी थे। पद तो उनका बहुत ऊंचा था, लेकिन जितना पद ऊंचा था उतने ही विचार भी ऊंचे थे और कर्म भी ऊंचे थे। जैसे एक बार की घटना सुनाते हैं कि वो कहीं जा रहे थे किसी मीटिंग में, रास्ते में कोई बीमार व्यक्ति था तो उसके रिश्तेदारों ने गाड़ी रोक ली। उन्होंने कहा मीटिंग में मैं बाद में चला जाऊंगा, पहले इस बीमार को मेरी गाड़ी से हॉस्पिटल में पहुंचा दो। तो बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि राजनीति में रह करके और आप ऐसे ऊंचे विचार रखते हैं, इतने निरहंकारी होके रहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने मेरे से एक बार सवाल पूछा था कि ताजमहल में दो प्रकार के पत्थर लगे हुए हैं। एक पत्थर तो वो है जिससे ताजमहल का ऊपर का हिस्सा बना हुआ है, वो संगमरमर का पत्थर है, बड़ा चिकना है और लोग उसको देखते हैं, खुश होते हैं। लेकिन एक पत्थर वो है जो ताजमहल की नींव में पड़ा हुआ है, कोई उसको जानता नहीं है, देखता नहीं है, उसकी महिमा नहीं करता है। लेकिन अगर ताजमहल आज तक टिका हुआ है इतने वर्षों तक, तो कौन से पत्थर की बदौलत जो नींव में पड़ा हुआ है, भले मोटा पत्थर है, खुरदुरा पत्थर है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सीख मिली कि मुझे अपने जीवन में चिकना पत्थर नहीं बनना, लेकिन नींव का पत्थर बनना है जो इस देश को थमा सके, आधार दे सके। तो बाबा के भी संगमयुगी बच्चे ऐसे ही बच्चे हैं जो स्वर्ग रूपी भवन की नींव में पड़े हुए हैं, क्योंकि संगम युग का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है। और जब वो संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं तो उस समय भी उनका वर्णन तो नहीं होता, दुनिया कहाँ जानती है। लौकिक दुनिया में हम देखते ही हैं किसी क्लब के द्वारा बच्चों को बस्ते बांटे जाते हैं, किताबें बांटी जाती हैं। अब पता नहीं कितने बस्ते बांटते हैं और कितने गरीब बच्चों तक पहुंचते हैं, लेकिन उसका फोटो बहुत बड़ा बड़ा आता है। और यहाँ बाबा के बच्चे तन मन धन सब कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी क्या उतनी पब्लिसिटी बाबा के बच्चों को मिलती है? तो ये संगम युग वास्तव में जीरो बनने का युग है। और जो इस समय गुप्त रहेगा वो संगम युग के बाद आने वाले युग में हीरो पाटधारी बनेगा। और भी हम कहानियां पढ़ते हैं, जैसे बाबा कहते हैं लौकिक दुनिया की जो कहानियां बनती हैं वो इस ड्रामा की बड़ी कहानी के आधार पर बनती हैं। बहुत सारी हिस्टोरिकल, पौराणिक या वर्तमान युग की भी हम कहानियां पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो कहानी का हीरो होता है या कहानी की जो हीरोइन होती है वो शुरू में बड़ा कष्ट सहन करते हैं। कभी उन पर इल्जाम लगता है, कभी लोग उनका विरोध करते हैं, कभी उन्हें सहयोग नहीं मिलता, कभी वो सच्चे होते हुए भी लोगों की नजरों में बुरे बन जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ सहन करते चले जाते हैं। अच्छे काम करते हैं फिर भी सहन करना पड़ता है। फिर क्या होता है, जब कहानी का एंड आता है तो रहस्य खुलता है, अरे भाई ये तो सच्चा आदमी था, अरे भाई ये तो अच्छा आदमी था। फिर सारे लोग उससे माफी मांगते हैं, भाई हमसे भूल हो गई, माफ कर दे। तो वो कहानी का हीरो होता है जिसने इतना सहन किया और अंत में लोगों ने उसकी वाहवाही की। तो इस ड्रामा की कहानी भी ऐसी बनी हुई है। हम सब बाबा के बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और जो बुरा काम करते हैं उनको इतना थोड़ी सहन करना पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक भाई आया था, उसने कहा बहन जी मैं 13 साल की आयु में गलत आदतों में पड़ गया, 18 साल की आयु में तो मुझे सारे व्यसन लग गए, और 21 साल की आयु में मेरे परिवार में 4 मेंबर हो गए, एक पत्नी और 3 बच्चे, और गरीबी के मारे मेरा बेहाल, बहुत सारा कर्ज चढ़ गया, फेफड़े में पानी भरने लगा। पर उस समय मैं ज्ञान में आ गया और आश्रम जाने लगा तो आसपास के लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, अरे भाई ये कोई तेरी उम्र है ज्ञान में जाने की, अभी तो तेरी आयु बहुत छोटी है। बोला जब मैंने 13 साल की उम्र में गुटखा खाना शुरू किया एक आदमी भी मेरे पास नहीं आया कि भाई अभी तेरी उम्र थोड़ी है गलत काम करने की, गुटखा खाने की। और जब मैंने 21 साल की उम्र में आश्रम में जाना शुरू किया तो मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि अरे भाई ये तू क्या करता है। तो मैंने उनको कहा कि गुटखा तो चाहे बच्चे को गुट्टी में मिला के पिला दो तो भी लोग नहीं बोलेंगे, और आश्रम में तो कोई बूढ़ा भी जाएगा ना तो उसको भी लोग बोलेंगे। तो इसलिए अच्छे मार्ग पर चलने वालों को सहन करना पड़ता है, और सहन करने की शक्ति तब आती है जब हम जीरो बन जाते हैं, आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं। जैसे कई भाई बहनों से आपने अनुभव सुना होगा कि जब वो बीमार थे तो उन्होंने पहले तो बड़ा डर महसूस किया, पता नहीं क्या होगा, फिर सब कुछ बाबा पर छोड़ करके वो जीरो बन गए। तो डॉक्टर ने क्या किया, नर्स ने क्या किया, किसने कितने दिन क्या किया, बस वो जीरो बन करके रहे, ट्रीटमेंट पूरी हो गई उनको ना दर्द हुआ, ना डर लगा, ना फीलिंग आई, और क्योंकि जीरो बन के रहे तो बाबा की भी पूरी मदद मिली, तो बीमारी का पेपर जैसे हंसते हंसते पार हो गया। तो बीमारी रूपी कर्म भोग के समय अगर हम जीरो बनने का अभ्यास करें तो दर्द से भी और चिंता से भी मुक्ति मिलती है और बाबा के साथ का भी अनुभव होता है। लेकिन ये जीरो बनने का अभ्यास सरल हो जाए इसके लिए क्या करें? इसने बहुत अच्छा कहा है कि मनुष्य का जीवन विरोधी क्रियाओं से बना है। जैसे हम श्वास लेते हैं, लेकिन जैसे ही लेते हैं उसको छोड़ भी देते हैं। हम खाना खाते हैं, पेट भर लेते हैं, लेकिन खाना खाया, पेट भरा, उसके बाद उत्सर्जन भी होता है और अगले दिन हम फिर खाना खाते हैं। आंख खोल के हम किसी को देखते हैं और फिर तुरंत आंख बंद भी करते हैं, पलक झपकती रहती है लगातार, कोई भी आंख खुली नहीं रख सकता। पांव से चलते हैं, फिर पांव को खड़ा भी कर लेते हैं, तो एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जुड़ी हुई है। ये हमारी रोज की दिनचर्या का अहम पार्ट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल सांस ले और छोड़े ना, केवल खाना खाए और उत्सर्जन ना हो, केवल देखता ही रहे, आंखें बंद ना हो, चलता ही रहे, रुके ना, तो कैसा हो जाएगा जीवन? जीवन चलेगा ही नहीं, अब नॉर्मल जीवन हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आत्मा रूप में इस देह में आए, देह लेना एक जरूरी क्रिया है। बाबा कहता है कोई भी आत्मा सदा मुक्ति की अवस्था में नहीं रह सकती, हर आत्मा को शरीर लेना पड़ता है, पार्ट बजाना पड़ता है। शरीर को धारण करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, शरीर की स्मृति में रहना भी हमारे लिए जरूरी है। अगर हम शरीर की स्मृति में ना हो तो हाथ को कैसे यूज करेंगे? शरीर एक साधन है, मुझे इसको काम में लगाना है। लेकिन जितना शरीर को साधन मान करके उसको काम में लगाना जरूरी है, उतना ही उसको समेट करके वापस रख देना भी जरूरी है। जैसे सांस लेना जरूरी है और फिर सांस छोड़ना जरूरी है, जैसे गाड़ी में बैठ करके गाड़ी को चलाना जरूरी है और सफर पूरा हो गया तो गाड़ी से उतरना जरूरी है, जैसे रात को हम सोते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, लेकिन सुबह उठना भी जरूरी है और बिस्तर को समेटना भी जरूरी है। रोज फैलाते हैं और रोज सिकोड़ते हैं। बाबा कहते हैं ना बच्चे समेटो, तो फैलाने और समेटने की क्रियाएं 24 घंटे चलती रहती हैं। किचन में काम करने वाला अभी अभी किचन को बिखेरता है और अभी अभी काम पूरा करके उसको समेट लेता है। ऑफिस में काम करने वाला अभी अभी फाइल बिखेरता है और काम पूरा होने के बाद फाइलों को समेट लेता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही इस शरीर को, इस साधन को फैलाओ, यूज करो, देखो, सुनो, बोलो, चलो, कर्म करो। लेकिन कर्म हमेशा तो नहीं चलता, कर्म पूरा भी तो होता है, हर कर्म अवश्य पूरा होता है, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो 24 घंटे चलता हो। तो जैसे ही कर्म पूरा हो फिर से वैसे ही बन जाओ जैसे इस शरीर को पहनने से पहले थे। हमने जब इस कपड़े को पहना तब हम किस रूप में थे? जब हमने इस कोट को पहना, शरीर रूपी कोट को पहना, उससे पहले हम किस रूप में थे? जीरो ही तो थे और क्या थे? जीरो के ऊपर ये इतना लंबा चौड़ा आवरण लपेट दिया गया, इसलिए इसके द्वारा हमको कर्म करना है। अब काम तो पूरा हो गया, फिर हम इसका बोझ उठाए उठाए क्यों घूम रहे हैं? अगर हम सारा दिन इसका बोझ लिए घूमेंगे तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? जीरो आत्मा और इतना बड़ा शरीर, और शरीर इतना बड़ा है वो तो है, लेकिन शरीर के संबंध, शरीर के पदार्थ कितना लंबा चौड़ा विस्तार है। एक बात याद करते हैं और उसके साथ 10 बातें याद आती हैं, तो बुद्धि क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, बोझिल हो जाती है। जिस बात को याद करना चाहते हैं वो भूल जाती है, जिसको याद नहीं करना चाहते वो एक के साथ 10 बातें याद आ जाती हैं, तो बुद्धि में व्यर्थ का किचड़ा भर जाता है, बोझिल हो जाते हैं। और इस बोझ को उठाए उठाए हम जीवन की यात्रा को पूरा करते रहते हैं। तो सरल तरीका क्या है जीवन जीने का? सरल तरीका ये है कि इसको पहनो। जैसे हमने खूंटी पे कोट टांगा हुआ है, सर्दी लगी पहन लिया, पहनना जरूरी है, लेकिन जैसे ही धूप निकली वैसे ही क्या करेंगे? कोट को उतार के वापस खूंटी पे टांग देंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम उसको पहन के खाएं, पहन के सोएं, 24 घंटे पहने रहें, तो हमारे लिए कोट क्या बन जाएगा? हमारे लिए बोझ बन जाएगा। इतना भारी कपड़ा उठाए उठाए घूमे, हमको बेआरामी होगी। इसी तरह से कितना भी बढ़िया जूता हो, अपन पहनते हैं पांव की सेफ्टी के लिए, लेकिन उसको पहने पहने ही सोना पड़े, पहने पहने ही जागे, तो पांव का क्या हाल होगा? पांव को तो हवा भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे इस शरीर रूपी कपड़े को पहनो, इससे काम लो और फिर इसको उतार दो, फिर पहनो, फिर काम लो और फिर उतार दो। सारा दिन कितनी बार जूते पहनते और उतारते हैं, कितनी बार कोट को पहनते और उतारते हैं, मुश्किल लगता है क्या? आदत पड़ गई है। और कोट को जब उतारती हैं तो ऐसे ही नहीं रखते हैं, उसमें सलवटें नहीं पड़नी चाहिए, ठीक जगह रखते हैं ताकि दोबारा पहने तो ठीक ठाक रहे। तो जब इस देह की स्मृति को उतार देते हैं तो आत्मा को हल्कापन महसूस हो, और हल्कापन महसूस करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? जहां उसको भारीपन महसूस ना हो, उसके ऊपर चिंता चिंतन का भार ना रहे। तो आत्मा को भी परम धाम रूपी खूंटी के ऊपर टांग दो थोड़ी देर के लिए, वो भी आराम कर ले। उसके बाद फिर नीचे आओ, फिर शरीर रूपी कपड़ा पहनो, और अब इसको पहन करके काम करेंगे ना तो काम करना बड़ा अच्छा लगेगा। कहेंगे वाह इतना हल्कापन है, लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कोई कहेगा अरे भाई तुमने तो इतना काम किया, इतनी भाग दौड़ की, इतना तुम चले। वो बोलेगा कब चला, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो लग रहा है मैं तो आराम में हूं, मुझे और भी काम बता दो बेशक। क्योंकि कर्म किया और कर्म की जो स्मृति थी उसको खत्म कर दिया। हमको कर्म बोझिल नहीं करता, लेकिन कर्म की स्मृति बोझिल करती है। जैसे एक व्यक्ति ने 2 दिन पहले बहुत बोझा उठाया था और वो आज याद करता, अरे भाई मैंने इतना बोझा उठाया था, मेरी तो कमर में दर्द हो गया था, मेरी तो गर्दन, उसको आज भी लगेगा अभी भी मेरी कमर में दर्द है और मेरी गर्दन टेढ़ी हुई है। 2 दिन पहले की बात है, बोझ 2 दिन पहले उठाया था, खत्म हो गया, लेकिन आज याद करेगा तो शरीर पर उसका असर आएगा। और कोई बोझ उठाया, बात खत्म हो गई, आधे घंटे बाद भी कोई पूछेगा तूने कुछ किया था, बोलेगा नहीं मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे को तो ध्यान ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म तो करो, लेकिन कर्म की स्मृति के बोझ को क्यों उठाए रखते हो? हम तो 20 साल बाद भी उठाए रखते हैं, 10 साल बाद भी उठाए रखते हैं, मैंने ये किया था, इतना मुश्किल काम किया था, फिर ये किया था, तो वह वाला बोझ अभी भी महसूस होने लगता है। तो जो जीरो स्टेज है वो बिल्कुल हल्की स्टेज है, कर्मातीत स्टेज है, बिल्कुल निर्लिप्त स्टेज है, एकदम जैसे लाइट लाइट, प्रकाशमान भी और हल्की भी, जिसको बाबा कहते हैं डबल लाइट। तो जब हम डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं कर्म करते हुए, जैसे दुनिया में डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप एक घंटे में एक गिलास पानी पिए तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। पानी एक बहुत बड़ी औषधि है, बहुत सारी बीमारियां पानी की कमी के कारण पैदा होती हैं। और शरीर में जो पांच तत्व हैं उनमें सबसे ज्यादा तत्व पानी ही है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत इसको पानी की है। तो जैसे एक घंटे में एक गिलास पानी बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, इसी तरह से एक घंटे में केवल एक मिनट हम जीरो रूप में आ जाएं, केवल एक मिनट अपने जीरो स्वरूप को धारण कर लें, उसके बाद बेशक हीरो बन जाएं, लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम जीरो बन जाएं, तो एक मिनट का वो जीरो स्वरूप हमारे एक घंटे को निर्विघ्न कर देगा। अगर हम एक मिनट जीरो स्वरूप बन जाएं, तो हमारा संपूर्ण जीवन निर्विघ्न बन जाएगा। जैसे वो एक गिलास पानी पीते हैं तो संपूर्ण जीवन निरोग रह सकते हैं, ऐसे ही एक घंटे में एक मिनट जीरो बना तो पूरा जीवन निर्विघ्न। और सतयुग में उसकी हीरो सीट तो फिक्स है ही। बाबा कहते हैं बच्चे अभी भी आप अननोन वॉरियर्स हैं, बड़े गुप्त योद्धे हैं, तो अभी भी वो हीरो है। और सतयुग में तो उसकी सीट फिक्स है ही। फिर बाबा कहते हैं बच्चे जैसे हम आत्मिक रूप में टिक गए, जीरो स्वरूप में आ गए, लेकिन जीरो स्वरूप में आना ही सफिशियंट नहीं है। ये तो आत्मिक स्मृति हो गई, आत्मिक स्थिति हो गई। इस स्थिति में भी हमारे पास बहुत बल होता है, आत्मबल। जैसे बाबा कहते हैं जितने भी धर्म पिता हैं उन्होंने धर्म की जो स्थापना की है वो आत्मबल से स्थापित की है, तो आत्मा में भी बहुत बल है, आत्मबल से उन्होंने इतने बड़े बड़े धर्म स्थापित किए। लेकिन संगम युग को ये वरदान है कि इसमें आत्मबल के साथ परमात्म बल भी जुड़ता है, इसलिए चमत्कारी कार्य होते हैं, थोड़े समय में पूरा विश्व बदलता है, इतनी आत्माएं बदलती हैं। तो जब परमात्म बल हमें मिल रहा है तो हम केवल आत्म बल से क्यों काम चलाएं, मिल रहा है तो हमको वो भी लेना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस जीरो के साथ जो इस सृष्टि का सर्वोच्च हीरो है, सर्वोच्च हीरो तो परमात्मा है ना, बाबा कहते हैं मुख्य एक्टर डायरेक्टर क्रिएटर बाबा है, उसका बल भी जुड़ जाए, आत्म बल और परमात्म बल दोनों मिल जाए। तो जैसे हम में से अधिकतर के पास डिजिटल कैमरा होता है, आप में से बहुतों के पास होगा डिजिटल कैमरा, कैमरा फोटो खींचता है, फोटो खींचने से बैटरी डाउन जाती है, एक समय ऐसा आता है उसमें एक निशान आ जाता है लाल रंग का, या फिर लिखत आ जाती है चेंज बैटरी पैक, बैटरी को बदलिए। फिर हम क्या करते हैं, कैमरे के अंदर बैटरी है, दिखती नहीं है किसी को, लेकिन जो कैमरे को चला रहा है उसको तो मालूम है, वो कैमरे का ढक्कन उठाता है उसमें से बैटरी बाहर निकाल लेता है। और एक चार्जर होता है जिसमें बैटरी रखने की फिट जगह बनी होती है, उसमें बैटरी को लगा देता है। बैटरी चार्जर में कब लगी, जब कैमरे से बाहर निकली, कैमरे के अंदर अगर पड़ी रहेगी वो चार्ज नहीं होगी, वो डिस्चार्ज ही पड़ी रहेगी और आपके बाकी फोटो नहीं खींचेगी, लाल निशान आता रहेगा, आप क्लिक करते रहेंगे, या तो धुंधली फोटो खींचेगी या खींचेगी ही नहीं। आपको बैटरी को कैमरे से बाहर निकालना ही पड़ेगा, और निकाल करके भी काम नहीं चलता, निकाल के केवल बाहर रख देंगे तो वो चार्ज नहीं होगी, आपको चार्जर में उसको फिट करना पड़ेगा, और फिट करने के लिए भी एक सिस्टम है, जब आप फिट करते हैं तो आवाज आती है, हाँ ये फिट हो गई। अगर आपने ठीक से फिट नहीं किया तो बैटरी भले उस चार्जर में पड़ी रहे, एक घंटे बाद भी आप देखेंगे, कहेंगे अरे भाई ये तो चार्ज ही नहीं हुई, मैंने घंटा भर रखी क्योंकि ठीक से नहीं लगाई, और घंटा दो घंटा आपने रखी, बैटरी चार्ज हो गई, आप पुनः क्या करेंगे, उसको कैमरे के अंदर डालेंगे और अब आप फोटो खींचिए, कितनी बढ़िया फोटो खींच रही है, लाल निशान खत्म हो गया और बहुत बढ़िया फोटो आने लगी। अब यही इस शरीर रूपी कैमरे का और आत्मा रूपी बैटरी का भी सिस्टम है, आप कैमरे के अंदर बैटरी को रख करके चार्ज कर ही नहीं सकते, आपको कैमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा, और डिटैच होकर के चार्जर में फिट होना पड़ेगा। अब उस कैमरे के चार्जर तो दुनिया में कहां जहां तहां मिल जाते हैं, कहीं भी आपको शू भी मिल जाता है, लगाया चार्जिंग कर ली, गाड़ी में भी आजकल तो ट्रेन में भी मिल जाता है, लेकिन ह्यूमन बैटरी ऐसी है जिसका चार्जर जहां तहां नहीं मिलता, केवल एक ही चार्जर है और उसका फिक्स स्थान है, आपको इस बैटरी को वहां ले जाना पड़ेगा, चार्जर के पास आपको ले जाना पड़ेगा, और फिर ऐसे नहीं कि बैटरी कहीं और चार्जर कहीं, पहुंच तो गया वहां पे, आपको फिक्स जगह पे फिक्स करना पड़ेगा जो जगह बनी हुई है, फिर देखो बैटरी चार्ज होनी शुरू होगी, आपने रखा उसके स्थान पे, और जितनी देर आप रखेंगे, जैसे आप चार्जर में अगर केवल 15 ही मिनट रखेंगे बैटरी को तो इतनी शक्ति आएगी, एक दो फोटो फिर खींच देगा, आधा घंटा रखेंगे बहुत आएगी, दो घंटे रखेंगे माने जितना उसका टाइम पीरियड होता है, जल्दी उठा लेंगे तो जल्दी डिस्चार्ज होगी। तो हमने इस बैटरी को परम धाम ले गए कैमरे में से निकाल करके और चार्जर में डाला, शिव बाबा के साथ कनेक्शन जुटा, शिव बाबा में समा गए, लेकिन तुरंत नीचे आ गए तो जरा सी चार्जिंग हुई, थोड़ी देर तो काम ठीक से करेंगे, उसके बाद फिर चिड़चिड़ाना शुरू कर देंगे, फिर थकान आएगी, फिर कुछ कुछ देहभान आएगा, कुछ कुछ दृष्टि वृत्ति कृति हिलेगी, फिर लगेगा बैटरी डाउन हो गई, फिर क्या करेंगे, फिर परमधाम जाएंगे, फिर थोड़ी चार्जिंग करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुबह सुबह अपनी बैटरी को पूरा चार्ज कर लो, कैमरे की बैटरी को आप मान लो आप आबू जाते हैं तो एक बार यहाँ नीचे से अच्छे से चार्ज करके ले जाते हैं ना, चार्जर को कौन उठाए, चार्जर उठाने का झंझट नहीं रहता एक बार अच्छे से चार्ज हो गई तो। सुबह सुबह जब हम जीरो बनने का अच्छे से अभ्यास कर लेते, जीरो बनकर के सुप्रीम हीरो में समा गए, उसने अपनी संपूर्ण शक्तियां इस बैटरी में भर दी, क्योंकि जैसे ही ये अपने स्थान पे टिकती है वो चार्जर अपना काम करना शुरू कर देता, उसको कहना नहीं पड़ता कि तुम अपनी शक्ति दो या मुझे चार्ज करो, नहीं, आप जो स्थान बना है बाबा में समाने की जो विधि है, या बाबा कहते हैं मेरे दिल तख्त पे आके बैठ जाओ, दिल तख्त पर बैठने का जो तरीका है उस तरीके से आप समाइए, उसके दिल तख्त पर विराजमान हो जाइए, उसकी किरणों में फवारी की तरह से भीग जाइए, आप चार्जिंग हो जाएंगे। इतनी चार्जिंग हो जाएगी कि वो सारा दिन चलती रहेगी। तो जो सुबह सुबह जीरो बनेगा वो सारा दिन हीरो पार्ट बजाएगा। बाबा कहते हैं जिसको जितना ज्यादा जीरो बनने का अभ्यास होगा संगम युग पर, उसकी कर्मातीत अवस्था भी बहुत सरल और बहुत शीघ्र होगी। कई भाई बहन कहती हैं, बहन जी आप कर्मातीत स्थिति की बात करते हो, हमारा तो योग भी नहीं लगता। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, टारगेट ऊंचा रखते हैं। बच्चे को हम क्या कहते हैं, वो कहेगा मैं तो मुश्किल से पास होऊंगा, तो हम कहते हैं अरे भाई तू टारगेट तो ऊंचा रख, फर्स्ट डिवीजन का टारगेट रखेगा तब तेरी सेकंड आएगी, और सेकंड का टारगेट रखेगा तब तेरी थर्ड आएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे टारगेट हमेशा ऊंचा रखो, तो हमको टारगेट तो ये रखना है ना कि हमको कर्मातीत बनना है। ठीक है अभी हम जितना चाहते हैं उतनी हमारी स्थिति नहीं है, लेकिन टारगेट रखेंगे तो वैसी स्थिति भी बन जाएगी। बाबा कहते हैं लक्ष्य रखने से लक्षण आते हैं। तो कर्मातीत स्थिति क्या है, हम एक पंछी के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक पंछी, कई ऐसे पंछी होते हैं जिनको मिट्टी में भी चलना आता है, पानी पर भी तैरना आता है और आसमान में उड़ना भी आता है। ये तीनों विशेषताएं कौन से पक्षी में है, हंस में ये तीनों विशेषताएं होती है ना। वो जमीन पे भी चल सकता है, पानी में भी तैर सकता है और उड़ भी सकता है, और भी बहुत सारे पक्षी ऐसे होते होंगे। तो जब पक्षी जमीन पर चलता है तो उसके पांव के निशान बनते हैं, पता पड़ता है यहाँ से कोई पक्षी गया है। जब वो पानी पर चलता है तो पीछे पीछे पानी में निशान तो बनते हैं, लेकिन वो जैसे आगे जाता है निशान मिटते जाते हैं। और जब वो आसमान में उड़ता है तो कुछ भी नहीं बनता। तो ऐसे बाबा कहते हैं जब आपकी तमोगुणी अवस्था है तो हरेक कर्म का निशान आपके ऊपर लगता जाता है। हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते, कर्मों के बंधन में बनते जाते। कर्म किया उसका भी निशान लग गया, दूसरा कर्म किया उसका भी निशान लग गया। आगे आगे हम होते हैं और हमारे पीछे पीछे हमारे कर्म बंधन होते हैं। हम सोचते हैं हम आगे दौड़ रहे हैं लेकिन हमारे संस्कार हमारा पीछा कर रहे होते। और जब रजोगुणी अवस्था होती है तो जैसे पानी, हम पानी पे चल रहे हैं, कर्म करते हैं उसका थोड़ा असर आता है लेकिन तुरंत खत्म हो जाता है। और सतोगुणी अवस्था कौन सी है, कर्म किया लेकिन ऐसे जैसे पंछी आसमान में उड़ता है, उड़ती कला जिसको बाबा कहता है। तो जब हम जीरो अवस्था में टिक करके कर्म करते हैं तो ये अवस्था ऐसी है, जीरो अवस्था में टिके, डिटैच हुए, शरीर को लिया लेकिन अभी भी स्मृति है कि मैंने इसको लिया है कर्म करने के लिए, मैं इसको उतारने वाला हूं। तो ऐसी स्थिति में जो कर्म होते हैं वो कर्म लेप छेप से न्यारे होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा दुनिया में लोग कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, लेकिन वास्तव में आत्मा निर्लेप नहीं है लेकिन आत्मिक स्थिति निर्लेप है। हम जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं उतना उतना समझो निर्लेप अवस्था में रहते हैं। निर्लेप का मतलब होता है जिसको कोई कर्म का लेप छेप ना लगे। बाबा कहते हैं निर्लेप तो केवल मैं हूं, क्योंकि मैं कर्म करते हुए भी कर्म के फल से मुक्त हूं। निष्काम सेवाधारी केवल मैं हूं, मैं जो कर्म करता हूं उनका मुझे ना अच्छा ना बुरा फल मिलता है, लेकिन हम आत्माएं निर्लेप नहीं है, हमें अपने कर्मों का अच्छा फल भी मिलता है और बुरा फल भी मिलता है। लेकिन सतयुग में हमारे जो कर्म हैं, वो अकर्म होते हैं। सतयुग के कर्म ना अच्छे खाते में और ना बुरे खाते में। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति में टिक करके कर्म करते हैं, जीरो स्थिति में टिक करके कर्म करते हैं। तो जीरो स्थिति में जो कर्म किए उनसे ना अच्छा बना और ना बुरा बना, और इसलिए सतयुग में जितनी भी आत्माएं हैं, जीरो स्थिति में आत्मिक स्थिति में टिक करके कर्म करती है ना, तो वो सब की सब इस ड्रामा की हीरो पार्टधारी हैं। उनमें भी फिर नंबरवार तो हैं, लेकिन 650 करोड़ आत्माओं में से हीरो पार्टधारी वो आत्माएं, क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा के शुरू में हीरो हीरोइन रंगमंच पे आते हैं, और शुरू में आकर के वो लास्ट तक पार्ट बजाते हैं। तो सतयुग के पार्टधारी हीरो पार्टधारी हैं, जीरो बनकर के पार्ट बजाते हैं। कई बार ये भी सवाल उठता है कि सतयुग में कर्म अकर्म क्यों बनते हैं। बाबा इसके लिए भी हम बच्चों को बहुत अच्छी सावधानी देते हैं। बाबा कहते हैं देखो, पुण्य कर्म या अच्छे कर्म कब किए जा सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति दान करता है तो दान तब कर सकेगा जब एक अमीर हो और एक गरीब हो। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल खुलवाता है, ये तब होगा जब एक व्यक्ति के पास पैसा हो और बहुत सारे लोग बीमार हों। लेकिन सतयुग में कोई गरीबी नहीं है, कोई बीमार भी नहीं है, कोई भूखा भी नहीं है, तो कौन किसका भला करे और कैसे पुण्य कमाए? इसलिए वो युग है की हुई कमाई को खाने का युग। जैसे कई हमारे भाई बहने हैं जो नौकरी करते हैं कई वर्षों तक, आजकल नौकरी की उम्र 58 साल या 60 साल ऐसे है, नौकरी करते हैं 8 घंटा तो ऑफिस की ड्यूटी होती ही है, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, ऐसे करके 10 घंटे भी हो जाते हैं, किसी को 2 घंटे भी लगते होंगे, मना 8, 10, 12 घंटे उनके रोज संडे छोड़ करके लगते हैं, कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, 60 साल तक कर्म करते हैं। उसके बाद बैठ करके पेंशन खाते हैं बिना कुछ किए। तो वो पेंशन किसका फल है जो इतने वर्षों तक 10 घंटे 12 घंटे लगातार काम किया? तो सतयुग में बैठ के पेंशन मिलती है, वो पेंशन किसका फल है? वो सतयुगी पेंशन इस समय बाबा कहता है बैठो मत, भागो, सेवा करो। अगर कोई सेवा करके भी आता है ना तो भी बाबा कहता है फिर भागो, भगाए रखता है। एक बार जब बाबा साकार में थे तो एक प्रदर्शनी लगी थी और उसमें कई भाई बहनों ने बहुत सेवा की थी, इतना समझाया गला भी दुख गया, तो सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो एक दो भाई बहन आकर के आराम में चले गए। तो बाबा ने पूछा फलाना बच्चा कहाँ है, तो किसी ने कहा आराम कर रहा है। बाबा ने कहा उसको बुलाओ, तो बुलाया। बाबा ने कहा बच्चे कहाँ से? बोला बाबा इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, अब थोड़ा आराम कर रहा था ना। बाबा ने कहा अच्छा, सतयुग की स्थापना का काम पूरा हो गया क्या, तुम आराम कर रहे थे? तो बाबा क्या कहता है संगम युग पे हम सब बच्चों को, बच्चे आराम हराम है, आराम नहीं करना। भले कोई बुजुर्ग हो, भले कोई छोटा बच्चा हो, बाबा के पास सबके लिए योजना है और सबको बाबा किसी ना किसी सेवा में लगा देता है। तो अभी हमको इतना सेवा में लगा के रखेगा, बीमार हो उसके लिए भी बाबा के पास योजना है। जैसे कहती है मम्मा बीमार थी तो लास्ट दिन भी तौली देने की सेवा बाबा ने करवाई और बाबा ने लास्ट दिन भी मुरली चलाई और हमारे बहुत सारे महारथी भाई बहने लास्ट दिन भी सेवा करते करते जैसे अगली यात्रा पर गई। तो बाबा बीमार से भी सेवा करवाता है और कुछ नहीं तो दृष्टि देते देते गए, मुरली सुनते सुनते गए। तो संगम युग का जो समय है वो अथक सेवा का समय है। तन से करो सेवा, नहीं तो मन से करो, नहीं तो दृष्टि से करो, कैसे भी करो पर सेवा में लगे रहो, एक सेकंड भी व्यर्थ मत गवाओ। तो जब हम इतनी सेवा करेंगे तो कितना जमा होगा, और वो जमा किया हुआ 2500 साल तक खाएंगे बैठ करके। फिर जब बैठ करके खाती है फिर क्या होता है, फिर वो चीज खत्म भी तो होती है ना, आखिर कितना दिन। तो 2500 साल के बाद पेंशन मिलनी बंद, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर कमाई करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय बाबा तो होगा नहीं हमको कमाई कराना सिखाए, अभी तो देखो बाबा सिखाता है, इसलिए एक कदम में पदम है। भक्ति मार्ग में हम एक रुपया डालेंगे, बाबा कहता है एक रुपए का एक रुपया मिलेगा फल, लेकिन ज्ञान मार्ग में एक रुपए का पदम गुना। तो द्वापर युग में जब हम जाएंगे तो बाबा तो होगा नहीं जो एक का पदम गुना दे दे, लेकिन कमाई तो करनी पड़ेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, भक्ति मार्ग के हिसाब से दान पुण्य शुरू करेंगे, मंदिर बनवाएंगे उसमें ही पुण्य समझेंगे। द्वापर युग में लोगों में पुण्य करने की बड़ी होड़ होती थी, उस समय हरेक आत्मा ये सोचती थी कि मैं अपने पैसे से कोई ऐसी चीज बनवाऊं जो आने वाली पीढ़ियां मेरा नाम लें या उस चीज से सुख भोगे या पीढ़ियों तक मेरे को दुआ मिलती रहे। इसलिए जितने भी भारत के अच्छे अच्छे मंदिर हैं बहुत करके द्वापर युग में बने हैं, और उस समय मंदिरों में कितना कुछ लगाते थे लोग, अपना घर साधारण बनाते थे और मंदिर बहुत अच्छा बनाते थे। जैसे बाबा मुरली में कहता है राजा विक्रमादित्य के खजाने में इतना धन नहीं था और महल भी इतना सुंदर नहीं था जितना उसने सोमनाथ का मंदिर सुंदर बनवाया था। तो पहले ये होड़ होती थी कि मैं मंदिर बढ़िया बनवाऊं, बगीचा बढ़िया बनवाऊं, पानी का प्रबंध करूं, कुएं खुदवाऊं या पेड़ लगवाऊं, अपना घर साधारण, लेकिन परोपकार के कार्यों में बहुत धन लगाया। तो द्वापर युग में भी सुख था। बाबा कहते हैं इस सृष्टि में तीन हिस्सा सुख है और एक हिस्सा दुख है, अगर 50-50 हो फिर तो मजा ही ना आए। लेकिन द्वापर युग में भी लोगों की मनोवृत्ति रजोगुणी थी इसलिए इतना दुख नहीं था। फिर कलयुग आया तो क्या हो गया, कलयुग आ गया तो लोगों ने अपने स्वार्थ की चीजों में बहुत धन लगाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि परमार्थ में लगा हुआ धन भी निकाल करके स्वार्थ की चीजों में लगाया। जैसे बाप धर्मशाला बनवा के गया और बेटे ने धर्मशाला का ही किराया लेना शुरू कर दिया, बाप ने प्याऊ बनवाई और बेटा प्याऊ पे ही टैक्स लगा देता है, फिर धीरे धीरे इस तरह भी होने लगा। तो कलयुग में आकर के मनोवृत्ति तमोगुणी बन गई। अब तमोगुणी बन गई तो कर्म भी वैसे ही हुए और फिर एक दो से दुख भी मिलने लगा, धन की खींचतान होने लगी। इसलिए कलयुग माना दुखों का व्यापार, हर एक आदमी दुख बेच रहा है, और कलयुग माना देह अभिमान की अति, सब कुछ इस देह को मिल जाए। लोगों की मनोवृत्ति, किसी के पास पैसा है भी तो वो अधिकतम कोशिश करता है कि इसका मैं अधिक से अधिक उपभोग करूं, इसलिए देह अभिमान बढ़ गया, मेरा पैसा है मैं क्यों ना सुख से रहूं। तो देह अभिमान बढ़ गया, त्याग की भावना थी तो देह अभिमान कम था, भोग की भावना आई तो देह अभिमान बढ़ गया। अब इतना देह अभिमान बढ़ गया तो जीरो बनने में मुश्किल लगती, थोड़ी देर बनती है और फिर दम घुटने लगता है, फिर शरीर में आ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी ने कैद में डाल दिया, क्योंकि बहुत देह अभिमान है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब वापस लौटो, कलयुग से द्वापर युग वाली स्टेज में जाओ, माना रजोगुण में आओ, और उसके बाद त्रेता वाली स्टेज में, माना तो सामान्य, और उसके बाद फाइनल सतयुग वाली स्टेज में अर्थात सतोगुणी स्टेज में आओ। तो पहले हम द्वापर वाले संस्कारों को वापस इमर्ज करते हैं, धीरे धीरे देह अभिमान हटता जाता है, स्वार्थ घटता जाता है, रजोगुण आता है, फिर उसके बाद सतोगुण आ जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम अपनी उसी अवस्था तक वापस पहुंचते हैं। लेकिन बाबा ये भी कहता है कि बच्चे समय कम है, इसलिए गिरने में जितना समय लगा, गिरने में तो बहुत समय लगा, अब चढ़ने में एक सेकंड, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को लिफ्ट दी है, और ये लिफ्ट कौन सी है, अशरीरी स्थिति की तो लिफ्ट है, परम धाम से हम नीचे आए और पार्ट पूरा किया, इसमें हमको 84 जन्म लगे। सतयुग में जब आत्मा उतर करके आई थी, जिस दिन पहले दिन हम उतर करके आए थे, उस दिन से लेकर के अब तक 84 जन्म लगे, 5000 वर्ष लगे, और अब वापस परम धाम जाने में संकल्प किया और आत्मा पहुंच गई, एक सेकंड। तो बाबा कहते हैं ये चढ़ती कला का युग है, ये लिफ्ट का युग है। अब किसी को लिफ्ट मिलती हो और फिर भी वो धीरे धीरे चले, पैदल चले, बोझ उठा करके चले, तो कब पहुंचेगा? बाकी लोग तो लिफ्ट में बैठ के पहुंच जाएंगे और जो लेने वाली चीज होगी वो ले लेंगे, और वो बेचारा धीरे धीरे चलेगा, पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा तो देरी से पहुंचेगा, तब तक तो जो पद होंगे वो सारे बंट चुके होंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे लिफ्ट का इस्तेमाल करो, सेकंड में आने और जाने का अभ्यास करो, एक सेकंड, जैसे संकल्प किया, जैसे कहते हैं सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति मिली। अब कैसे जीवन मुक्ति मिली? अष्टावक्र ने कहा कि मैं जीवन मुक्ति तो दे दूंगा, लेकिन तुमको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो राजा जनक ने कहा ठीक है, आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, मैं आपको बहुत सारा सोना चांदी जो आप मांगेंगे, हीरे जवाहरात आपको दूंगा। बोला नहीं, ये कोई गुरु दक्षिणा नहीं है, मुझे इससे भी बड़ी चाहिए। तो बोला ठीक है, मैं आपको अपना राज दे दूंगा। बोला नहीं, ये भी कोई गुरु दक्षिणा नहीं। तो बोला अच्छा, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। तो पूछा मैं समर्पित करता हूँ इसका मतलब क्या, दे समर्पित करता हूँ? बोला नहीं गुरुजी, मैं मन सहित आपको समर्पित होता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, ये दक्षिणा है, लेकिन अब मन तूने मेरे को दे दिया, अब इस मन पर मेरा अधिकार है, अब इस मन से तू कोई बात सोच नहीं सकता, क्योंकि मन मेरा है। तो जैसे ही गुरु ने कहा अब ये मन मेरा है, तो एकदम गहन शांति का अनुभव हुआ, डिटैच होने का अनुभव हुआ, मन समर्पित हो गया, चिंतन संकल्प विकल्प जैसे एकदम ठहर गए, जैसे आत्मा बीज रूप स्थिति में चली गई, इतनी गहन शांति की अनुभूति हुई, तब उसको महसूस हुआ कि ये सचमुच जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे आप समर्पित हुए, पर क्या क्या समर्पण किया? जब तक मन समर्पण नहीं हुआ तब तक जीवन मुक्त नहीं बने, तब तक जीरो नहीं बने, और तब तक हीरो भी नहीं बने। जीरो स्थिति बात शक्तिशाली स्थिति होती है। जैसे कहती है ना, आजकल बहुत नए मॉडल की बहुत महंगी महंगी गाड़ियां भी आ रही हैं, तो कहते हैं भाई वो गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं, लेकिन उनकी स्पीड जितनी तेज होती है उनका ब्रेक भी उतना ही पावरफुल होता है। अगर पावरफुल ब्रेक ना हो तो स्पीड नुकसानकारी है। तो हम कितनी भी सेवा करें, कितनी भी स्पीड से करें, लेकिन ब्रेक भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए। अगर स्पीड है हमारी बहुत और जीरो बनने का ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट होते हैं। मैंने ये सेवा की, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये किया, ये एक्सीडेंट ही तो है ना। और सेवा की और ब्रेक लगा दिया, जीरो बन गए तो एक्सीडेंट से बच गए। इसलिए अपने ब्रेक को पावरफुल रखो, बार बार जीरो बनने का, बीज स्वरूप स्थिति में टिकने का अभ्यास करो। इससे हमारा ब्रेक और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और ज्यादा पावर आएगी। स्थिति पावर भरने की स्थिति है, और जितनी ज्यादा पावर भरेगी उतनी ज्यादा और स्पीड से काम करेंगे, तो ये एक क्या कहते हैं सुखद चक्र हो जाएगा, दुष्चक्र नहीं। शक्ति आई और सेवा की, शक्ति भरी और सेवा की, और जब हम ऐसा सुखद चक्र चलाएंगे तो पूरे सृष्टि चक्र में हीरो पार्ट बजाएंगे। ओम शांति।